जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय 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 शिशि गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। आज के इस रविवार के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 186। इसमें वर्ड वर्ड मिले प्रगाढ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्न दीर न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्न दीर न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्न देर ना करे विचार। माता प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार
निज दुख विघ्न दीर न करे विचार।
अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। उत्कृष्ट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तात्पर्य, जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कृष्ट प्रेम है, वे अपनी असुविधाओं तथा विघ्नों की परवाह नहीं करते। ऐसे भक्तजन भगवान या उनके प्रतिनिधि रूप गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी वे परम संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे सेवक का उत्कट प्रेम सिद्ध होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। जो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कट कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वे भगवतधाम वापस जाने के सुपात्र हैं। कृष्ण का उत्कट प्रेमी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की परवाह नहीं करता। कहा जाता है कि जब किसी को वैष्णव में दुख या शोक दिखे तो वह उसके लिए रंच भर भी दुख या शोक नहीं होता, यह तो दिव्य आनंद होता है। शिक्षा अष्टकम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, आश्लिष्य वा पादरताम। कृष्ण का उत्कट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले ही उसके समक्ष कितनी ही कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों न आए। श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश धारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित भक्तों के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही भक्तों की सेवा संभव है। यहाँ पर श्वेतदीप प्रभु, श्री उच्चरण प्रभु, रामनिता प्रभु, महावीर प्रभु इत्यादि जो भक्त हैं, इन्होंने अपने उदाहरण से और प्रेरणा से हमें भक्ति के पथ पर कैसे प्रगति करनी है इसके बारे में सिखाए हैं। तो ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र महीना है, इसमें हम चंदन यात्रा का विशेष उत्सव मना रहे हैं और साथ साथ इसमें कई सारे आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस भी आते हैं। तो पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक पूरा सत्र लिया था कि आचार्यों के बारे में सुनने से क्या लाभ होता है, आचार्यों के बारे में सुनने से, उनके बारे में पठन करने से, मनन करने से उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और भक्ति के मार्ग में कृपा ही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम प्रगति कर पाते हैं। जो बाकी सभी जो मार्ग हैं, कर्म हैं, ज्ञान है, योग है, इसमें व्यक्ति अपने प्रयास से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन भक्ति में प्रयत्न केवल एक ही कार्य के लिए किया जाता है, वो है कि भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जाए। और भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है, महत कृपा अनुगामी भगवत कृपा। तो इसीलिए भक्तों के बारे में सुनना, भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना, ये भगवान के चरित्र से सुनने से भी ज़्यादा हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है। तो इस प्रकार से हम जब भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं तो उनकी कृपा या उनका ग्रेस हमको प्राप्त होता है। और ग्रेस का अर्थ है कि हमारा हृदय उनके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि कृतज्ञता हमारा जो भगवत भक्ति रूपी जो वाहन है उसमें ईंधन के समान काम करता है। अगर नियमित रूप से ईंधन नहीं भरेंगे तो गाड़ी बीच में बंद पड़ जाती है। कल हमारे थे एक वाहन में तो आई माता चौक आशापुरा मंदिर जो है वहाँ पर गाड़ी बंद पड़ गई, और जब देखा उसका सब सिस्टम देख करके तो पता चला कि ईंधन खत्म हो गया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था। तो बिना ईंधन के गाड़ी चल नहीं सकती, थोड़े समय के बाद बंद पड़ जाती है, उसको नियमित रूप से भरना पड़ता है। अर्थात नियमित रूप से मनन करके हमारे हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति और जो भी भक्ति के अनेक साधन हमें दिए हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक बार अगर कृतज्ञता चली गई हृदय से तो भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत ही दुष्कर है। इतना कि गाड़ी में फिर से पेट्रोल डाला तो भी गाड़ी चालू नहीं हुई, क्योंकि जब तक इंजन ने हवा पकड़ ली तो फिर एक नया नया कार्यक्रम चालू हो जाता। दूसरा है कि भक्तों के बारे में जब श्रवण करते हैं तो उनके दिव्य गुणों का हमको पता चलता है कि भक्त के वास्तविक गुण कैसे होते हैं। क्योंकि भक्त, भगवान जब भक्त की व्याख्या करते हैं तो गुणों के माध्यम से ही करते हैं, कैसे भक्त उनको प्रिय है वो बताते नहीं है कि कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितना सुंदरता होना चाहिए, क्या सेवा उसने की होनी चाहिए, उसके अनुसार नहीं, वो बताते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो भगवान गीता के 12वें अध्याय के 8 श्लोकों में उनका वर्णन करते हैं किस प्रकार के भक्त उनको प्रिय है। तो भक्त जो है वो अपने गुणों के माध्यम से भगवान को प्रिय बनता है, इसलिए जो हमारे गुरु महाराज हैं उनको कहा जाता है प्रापस्य कल्याण गुणा अर्ण वस्य, वो गुणों के सागर। तो जब भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं तो उनके गुणों से हम प्रेरित होते हैं, और उसके बाद उनके गुणों का श्रवण करने से उनके प्रति हमारा आकर्षण होता है और आसक्ति जागृत होती है। जिस प्रकार से हम माता रुक्मिणी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जब नारद मुनि और आदि संतों से सुना भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में, तो केवल श्रवण करके उनके गुणों के माध्यम से उनके प्रति पूर्णतया आसक्त हो गए। तो इसीलिए जब तक आचार्यों के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उनके साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, उनके प्रति प्रेम की भावना या आसक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनके शिष्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। विशेष रूप से जो शिष्य शुरू में उनको बहुत सारा प्रभुपाद का संग प्राप्त हुआ तो उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनके जो निजी सचिव थे या व्यक्तिगत सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट थे, उन्होंने भी अपना जो अनुभव है श्रील प्रभुपाद जी के साथ लिखा है। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तब हमें प्रभुपाद जी के गुणों के बारे में पता चलता है, उनके कार्यों के बारे में पता चलता है, और उनके प्रति प्रेम आसक्ति जागृत तभी हो सकती है जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसीलिए अभी भी वृंदावन में, मायापुर में, गौर पूर्णिमा के टाइम में और कार्तिक के समय में श्रील प्रभुपाद मेमोरीज करके एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य बताते हैं कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी का संग लिया, क्या उनके अनुभव रहे। क्योंकि यह श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना और उनके प्रति आसक्त होना ये संभव हो पाता है। और चौथा, आचार्यों के चरित्र का श्रवण करने से हमें बहुत उत्साह मिलता है, करेज मिलता है, हौसला मिलता है कि इतनी सारी विपदाएं होने के बाद, इतनी सारी कठिनाई होने के बाद भी किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा को त्यागा नहीं। आज हम आगे देखेंगे किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी इतने सारे दुख और कष्टों को झेलकर भी प्रसन्नतापूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार, बिना अपने दुख और बिना विघ्न की चिंता किए हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो जब देखते हैं कि आचार्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट, असुविधाएं, दुख आते हैं और उसके बाद भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हमारे जीवन में जब छोटे मोटे कुछ सर्दी, खांसी, बीमारी, कुछ डेंगू इत्यादि हो जाता है तब हमको उत्साह रहता है कि हम भी सेवा में लगे रह सकते हैं। और पांचवा है कि हमको एक भगवान के प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है आचार्यों के जीवन से, कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में वो भगवान की सेवा निरंतर रूप से करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें उनका ग्रेस या उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इस महीने में तो कई सारे ऐसे दिवस हैं, लेकिन सबकी चर्चा एक क्लास में नहीं कर सकते, आगे वाले क्लास में भी जो भी भक्त देंगे वो उस पर कंटिन्यू करेंगे, विशेष रूप से कृष्णानंद प्रभु के आने की संभावना है तो चैतन्य चरितामृत से कथा करेंगे। लेकिन आज हम विशेष रूप से जो तीन माताओं का आविर्भाव इस महीने में आता है उसमें संक्षिप्त से देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा एक या दो सीख उनके जीवन चरित्र से, और उसके बाद जो श्रील माधवेंद्र प्रभु की सेवा है जिसके रूप में चंदन यात्रा का उत्सव मनाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और अंत में परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज का एक 5 मिनट का वीडियो क्लिपिंग है, लेकिन ऑडियो आपको सुनाएंगे जिसमें वो भक्ति का सार उसको बताते हैं। तो इस महीने में सीता नवमी आती है जो माता सीता का आविर्भाव दिवस है। तो माता सीता जिस प्रकार से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ लीला करते हैं, उनकी हिलादिनी शक्ति है, तो जिस प्रकार से भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग लीला अवतार के रूप में आते हैं, साथ में राधा रानी भी माता लक्ष्मी या माता सीता या अलग अलग रूप में उनके साथ आती है। तो माता सीता भगवान राम की नित्य संगिनी है, और हम जानते हैं किस प्रकार से भगवान राम को जब वनवास दिया जाता है तो माता सीता उनसे निवेदन करती हैं और वार्तालाप होकर के माता सीता उनके साथ जाती हैं, और फिर वो जो चित्रकूट है वहाँ पर कुटीर बनाकर रहने लगते हैं, और वहाँ पर फिर सुपर्णखा आती है, लक्ष्मण जी उसके नाक और कान काट देते हैं। तो इस प्रकार से घटनाएं होती हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना हम संक्षेप में चर्चा करेंगे जो कि श्री संप्रदाय के आचार्य इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। हालांकि माता सीता भगवान की शक्ति है, लेकिन वो इस संदर्भ में माता सीता की तुलना एक जीव से करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार जीव भगवान को छोड़कर माया में फंस जाता है। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट पंचवटी में रह रहे थे तो वहाँ पर सुपर्णखा आती है और भगवान राम के प्रति आकर्षित हो जाती है, और भगवान राम उनको लक्ष्मण के पास जाने के लिए कहते हैं, और इस प्रकार से लक्ष्मण और राम दोनों उनके साथ विनोद करते हैं। सुपर्णखा कुपित होकर माता सीता की ओर आक्रमण करती है तो लक्ष्मण उनके नाक और कान काट देते हैं। उसके बाद सुपर्णखा जाकर के खर और दूषण को बताती है और वे अपनी 14,000 राक्षसी सेना के साथ आक्रमण करते हैं, भगवान राम उनका भी संहार कर देते हैं। उसके बाद सुपर्णखा जाकर के रावण के महल में जाती है लंका में, और रावण अपने हिसाब से शांति से वहाँ पर रह रहा था क्योंकि उसका मिशन पूरा ब्रह्मांड में घूमकर इतने सारे जो श्राप अर्जित किए, इतने सारे जो धन इत्यादि अर्जित किया, उसके साथ तो रह रहा था वहाँ पर। सुपर्णखा जाकर उनको माता सीता के सुंदरता के बारे में, सौंदर्य के बारे में वर्णन करती है, और जो रावण जिसने कभी माता सीता के बारे में सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, केवल श्रवण करके सुपर्णखा से माता सीता के सौंदर्य का श्रवण करके आकर्षित हो गया, लेकिन गलत भाव से आकर्षण हुआ, लेकिन क्योंकि सही स्रोत से नहीं सुना, सही भावना से नहीं सुना, इसलिए गलत प्रकार का आकर्षण माता सीता के प्रति जागृत हो गया, और बाद में वो माता सीता के अपहरण की योजना बनाता है और मारीच को लेकर जाता है। तो मारीच जब सोने के मृग का रूप धारण करके पंचवटी में विचरण करता है माता सीता के सामने, तो माता सीता वहाँ पर भगवान राम को कहती हैं कि यह बहुत ही सुंदर हिरण है, इसको आप पकड़ लीजिए, इसको लेकर हम अयोध्या जाएंगे। तो देखिए माता सीता भगवान राम की सेवा में लगी हुई थी, और हिरण से उनकी जो भगवान के प्रति सेवा थी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक ऐसी इच्छा हुई कि इस हिरण के साथ हम कुछ आनंद लेंगे, कुछ विनोद, आनंद विनोद प्राप्त करेंगे। तो ये जो इच्छा है कि भगवान की सेवा करते हुए भी एक जो विक्षेप हमारे जीवन में आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि सेवा के साथ साथ थोड़ा कुछ और अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से कुछ कर ले, ये छोटी सी त्रुटि इसका जो परिणाम है बहुत भयावह हो जाता है। छोटी सी इच्छा थी, हम हिरण खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण जी ने उनको चेतावनी दी कि देखिए ये जो हिरण है ये 84 लाख योनियों वाला कोई भी प्राणी नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियां मैंने ही निर्मित की है ब्रह्मा जी को मार्ग निर्देशन दे करके, इनमें से नहीं है, मायावी है, ये मारीच है, और ये भगवान राम को दूर लेकर के जाएगा और बाद में आपका अपहरण हो जाएगा। तो पूरा जो भविष्य था वो भी पता है, लेकिन जब जीव किसी इच्छा के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो जो सदुपदेश है उसको ठीक प्रकार से नहीं सुन पाता है, इसी प्रकार से गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्र तृप्ति मृत्यु का साधन है, इंद्र तृप्ति दुख का कारण है। शिला प्रभुपाद जी इतना उसका खंडन करते हैं, हमारे जो भी गुरुवर्ग के लोग हैं वो भी उसके बारे में वर्णन करते हैं। एक लेक्चर में सुन रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, तो वो कह रहे थे सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स इट इज द पाथ टू योर ग्रेव। ये आपका जो जो ग्रेव को क्या कहते हैं, कब्र की ओर आपका ले जाने का रास्ता, इतना स्ट्रांगली बोल रहे थे। लेकिन फिर भी हम भगवान की सेवा में संलग्न रहने के बाद, भक्तों की संगति में रहने के बाद, गुरु से श्रवण करने के बाद, जो थोड़ी सी इच्छा, छोटी सी थोड़ी सी इच्छा जो आ जाती है कि भगवान की सेवा के साथ साथ, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ हमारे आनंद के लिए भी थोड़ा कुछ हो, तो उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत भयानक है। तो माता सीता ने जब इच्छा की तो भगवान राम उस हिरण को पकड़ने के लिए गए। बाद में पता है कि किस प्रकार लक्ष्मण जाते हैं उनके पीछे और रावण आकर के उनका अपहरण कर लेता है। तो उसी प्रकार से जब हम अपनी भोग इच्छा के लिए कुछ भी, भोग इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो मन और इंद्रिय रूपी रावण हमको जकड़ लेता है, और उसके बाद ये हमारी क्षमता में नहीं रह जाता है कि हम उस लंका से, उस रावण के बंधन से छूटकर वापस भगवान राम की शरण में आ जाए। ये हमारी क्षमता से बाहर हो जाता है। उसके लिए फिर भगवान फिर से हनुमान जी को भेजते हैं वहां पर। हनुमान जी यथार्थ हमारे गुरु महाराज फिर से जीवन में आते हैं, फिर उपदेश दे करके फिर भगवान राम आते हैं, आक्रमण करते हैं, इतना सब रावण और राम का युद्ध होता है, और उसके बाद माता सीता को बचाते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, एक छोटी सी अन्य इच्छा, उसका कारण कितना बड़ा हो सकता है, पूरी रामायण उससे निर्माण हो सकती है। तो ये सीख हम ले सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं माता सीता से कि हम हमारे जीवन में सदैव जो शुद्ध भक्ति है उसका ही पालन करें और किसी अन्य इच्छा से विचलित ना हो, किसी और इच्छा से हम भ्रमित ना हो। तो ये हम माता सीता से सीख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। माता रुक्मिणी के बारे में जैसे बताया कि किस प्रकार से उन्होंने सही स्रोत से सुना तो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया वो आसक्त हो गई, और पिछली बार इसका कृष्णपुर ने इतना सुंदरता से वर्णन किया किस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा और भगवान पत्र स्वीकार करके वहाँ पर आते हैं। तो एक एक क्या कहते हैं उदाहरण या वो एक परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि भगवान ये यथामाम प्रपद्यते करते हैं, जो जिनके साथ जैसा व्यवहार करता है उसी प्रकार से वो उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो पिछले अवतार में रावण ने भगवान की भार्या माता सीता का अपहरण किया था, तो माता सीता भगवान की भार्या थी। अभी जैसे हमने चर्चा की पंचवटी से रावण उनका अपहरण करके ले गया, तो भगवान भी टिट फॉर टैट करते हैं, ये था माम प्रपद्यते। तो इस जन्म में द्वापर युग में जब भगवान राम कृष्ण के रूप में आए तो बोले कि आप रावण हैं लेकिन शिशुपाल के रूप में आए हैं, पिछली बार आपने मेरी भार्या का अपहरण किया था, इस बार आपकी होने वाली भार्या क्योंकि रुक्मिणी कभी भी शिशुपाल की भार्या नहीं हो सकती है, तो भगवान की नित्य संगिनी है। तो लेकिन सब अरेंजमेंट हो गया है, एंगेजमेंट हो गया है, सब कुछ होने वाला है, उसी दिन आगे के मुहूर्त में विवाह होने वाला था। तो भगवान उस सेटिंग में जा करके एकदम स्लो मोशन में जा करके माता रुक्मिणी का अपहरण करते हैं उनको सिखाने के लिए। पिछले लीला में आपने किया, अभी इस लीला में हम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि माता रुक्मिणी से हम सीखें कि किस प्रकार से कृष्ण के प्रति शरणागति, यही जीवन का प्रथम उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य भगवान की शरणागति है, और बाकी जो भी हमारे कार्य है, जो भी हमारे वर्णाश्रम धर्म है, जो भी बाकी जिम्मेदारियां हैं, वो दूसरे स्तर पर है। तो माता रुक्मिणी इसका विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि किस प्रकार से जो, हालांकि उनको माता पिता से प्रेम था, भाइयों से प्रेम था, वो किसी प्रकार की हानि नहीं चाहती थी कि उनको किसी प्रकार की हानि हो, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ भगवान की शरणागति के अनुकूल नहीं थी उसको वो त्यागने के लिए पूरी तरह उत्साहित थे। तो ये हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का भौतिक संबंध हो, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उस संबंध में हम नहीं फंसे और भगवान की तरह पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए। इस महीने में माता जानवा इनका भी आविर्भाव दिवस आता है। माता जानवा नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में आ गए तो थोड़े समय के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखिए आप यहाँ आ गए लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है जीवों का उद्धार करना, जीवों को कृष्ण प्रेम वितरित करना। अभी मैं तो यहाँ जगन्नाथपुरी में रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बंगाल में जाकर पूरे बंगाल में प्रचार करें, और पूरे बंगाल में जाकर हर व्यक्ति को प्रचार करना है, केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों को प्रचार ही नहीं करना है, सब वर्ग, सब जाति, सब प्रकार के लोगों को बिना भेदभाव के प्रचार करना है। तो आपको हर मदिरालय में जाकर के, हर वैश्यालय में जाकर के भी प्रचार करना है, तो महाप्रभु ने आदेश दिया। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं क्या कह सकता हूँ, आप नवद्वीप में रहते थे, आप ग्रस्त थे, तो आपने प्रचार करने के लिए संन्यास धर्म ले लिया माता और पत्नी को छोड़ करके, और मैं एक अवधूत के रूप में वेश में रह करके, सन्यासी के रूप में रह करके प्रचार करता हूँ, तो आप मुझे कहते हैं कि मुझे प्रचार के लिए ग्रस्त जो आश्रम है वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप कठपुतली नचाने वाले हैं और मैं कठपुतली हूँ, जिस प्रकार से आप रस्सी खींचेंगे उसी प्रकार से हम नाचेंगे, तो अगर ये आपकी इच्छा है तो हम जा करके प्रचार करेंगे। तो उसका बहुत विस्तृत वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी से चल करके पानीहाटी आते हैं इत्यादि आते हैं। बाद में वो श्रीमती जानो माता जी और उनकी जो बहन है वसुधा देवी, उनके साथ विवाह करते हैं, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन क्योंकि चंद्र यात्रा के बारे में वर्णन करना है इसलिए उसके डिटेल में नहीं जा रहे। तो जानो माता जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु राधा तोटा गोपीनाथ मंदिर में जा करके वापस अपने धाम चले गए, और उसके बाद उनके विरह में नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये सभी वापस अपने धाम चले गए, उनसे विरह को सहन नहीं कर पाए। तो उस समय पर सभी वैष्णवों ने एकजुट आकर के माता जानुआ को, जो वैष्णव संप्रदाय था, समुदाय था, उनका प्रमुख माना, उनका नेता माना, अग्रणी माना उनको। तो इस प्रकार से उनको ईश्वरी नाम दिया, जानुआ ईश्वरी। तो सभी जो वैष्णव थे बंगाल के, उड़ीसा के, सभी माता जानुआ को अपना प्रमुख मानते थे। लेकिन माता जानुआ हमेशा सब भक्तों के सेवा भाव के रूप में ही रहते थे। उसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में आकर उनको कहा कि आप खेतुरी में गौर पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन कीजिए। तो वो अपने आप में एक कथा है, और इन कथाओं का निश्चित रूप से पठन या श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि कलयुग जो है वो डिस्ट्रैक्शन का युग है, इसमें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे, एक एडवर्टाइजमेंट था मोबाइल का, तो एक व्यक्ति एक मोबाइल पे SMS भेज रहा था, और एक ऐसा कान में लगाया हुआ था, और एक दूसरे हाथ से कुछ कर रहा था, और लिखा था 1 is not enough ऐसा। तो मोबाइल ने जितना लोगों को विक्षेपित किया है, जितना डिस्ट्रैक्शन किया है, उतना शायद अभी तक के जितने भी वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार किए हैं उतना शायद कोई विक्षेपित नहीं कर पाया है। तो डिस्ट्रैक्शन होने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वभाव से हो जाता है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन। लेकिन भगवान के प्रति एब्जॉर्प्शन लाने के लिए, अट्रैक्शन लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और इसी के लिए जो प्रभुपाद जी ने जो पद्धति दी श्रवण कीर्तन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अगर श्रवण और कीर्तन और जप अगर हम बिना विक्षेप के कर पाएंगे तो संभावना है कि बाकी अन्य कार्यों में भी विक्षेप से विहीन रहेंगे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि जो श्रवण कीर्तन का कार्य है उसी में विक्षेपित हो जाते हैं, उसमें विक्षेपित हो जाएंगे तब आगे के कार्य कैसे बिना विक्षेप के कर पाएंगे। तो भूल गया कहाँ पे, खेतरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने उनका जो गौर पूर्णिमा महोत्सव था उसका आयोजन किया, और उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो मैं इसलिए कह रहा था कि उसको पढ़ना चाहिए, हमारे पास पढ़ने और सुनने के लिए इतना कुछ है। सोचिए कि जो बाकी अन्य धर्मों का पालन करते हैं उनके पास एक ग्रंथ होता है बस, और उस ग्रंथ में कुछ कथाएं भी नहीं रहती हैं। उस ग्रंथ में ऐसे, मान लीजिए कुरान है तो पुरानी उर्दू में उसके स्टेटमेंट रहते हैं, या क्रिश्चियन का बाइबल है तो वो भी पुरानी अंग्रेजी है, उसको भी समझ पाना सरल नहीं रहता, और कथाएँ तो है ही नहीं उसमें, कुछ लीला कथा तो है नहीं। लेकिन हमारे पास इतने सारे लीला कथाओं का वर्णन है, हाँ, भक्ति रत्नाकार है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, इतना बड़ा सागर है कि उस सागर में अगर हम गोते लगाएंगे तो बाकी जो डिस्ट्रैक्शन का सागर है उससे छूट जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से केवल अट्रैक्शन से बच सकते हैं, जब तक अट्रैक्शन नहीं है भगवान के प्रति जब तक डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन एक चीज रहना है, एक चीज अनिवार्य है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हर क्षण हमें देखना चाहिए कि इस क्षण में माया की सेवा में लगा हुआ हूँ या कृष्ण की सेवा में लगा हूँ, हर क्षण ये विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियस क्या है, क्षणिक प्रोसेस है, एक क्षण से दूसरे क्षण, दूसरे क्षण से तीसरे क्षण, ऐसा पद्धति है। तो उसके लिए बहुत विस्तार से आयोजन किया, और उसके बाद माता जानवा को पता चला तो उन्होंने पूरा संदेश दिया बाकी जो शांतिपुर में, नवद्वीप में, अन्य जगह पर जो भक्त थे उनको। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं माता जानवा के स्वप्न में आए और बोले कि आप वहाँ पर अवश्य आइए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने पार्षदों के साथ साक्षात रूप से प्रकट होकर के कीर्तन में भाग लूँगा। तो इस प्रकार से माता जानवा को ये आदेश मिलने के बाद माता जानवा स्वयं कुछ भक्तों को खड़दाहा से लेकर के नवद्वीप आती हैं, वहाँ से भक्तों को लेती हैं, फिर शांतिपुर आती हैं, फिर अन्य कई गाँवों से होकर के इस प्रकार से बड़े संकीर्तन करते करते वे खेतुरी पहुँचती हैं। और उसका वर्णन आता है कि इस प्रकार से खेतुरी में संतोष दत्त और नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके स्वागत के लिए व्यवस्था की थी। तो वहाँ पर जो उत्सव होता है उस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं अपने पार्षदों के साथ और नृत्य करते हैं, और सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगले दिन जब विग्रह स्थापना का दिन था तो माता जानवा का सेवा भाव बताने के लिए उसका वर्णन कर रहे थे, किस प्रकार से वो कुकिंग की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वो कहते हैं कि जो विग्रह के लिए और भक्तों के लिए जो भोग बनेगा डीटीज और डिवोटीज के लिए, उसे हम खुद बनाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में भक्त थे, इतना बड़ा आयोजन था, लेकिन स्वयं माता जानवा सारा जो भोग है उसको तैयार करती हैं। फिर वो भगवान को भोग लगता है, और केवल भोग बना करके आराम करने के लिए नहीं जाते, भोग बनाने के बाद उसके सर्विंग की व्यवस्था करती हैं और स्वयं परोसती हैं भोजन को, प्रसाद को, और परोसने के बाद जो उनके साथ जो सर्वर्स थे फिर उनको परोसते हैं, उनके बाद उन सर्वर को जो परोसा उसको परोसती हैं, और अंत में जाकर के थोड़ा प्रसाद ग्रहण करते। तो ये प्रसाद भोग बनाने की और भोग प्रसाद सेवा करने की महिमा है कि माता जानवा जो नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी है वे भी इस सेवा को स्वयं करती हैं। उसके बाद जब वो वृंदावन जाती हैं तो वृंदावन में सब गोस्वामी के मंदिर में जाती हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, और हर मंदिर में जाकर के हर विग्रह के लिए स्वयं भोग बनाती। और इस प्रकार से जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सोत्रमय की, जय श्री श्री गौरनिता की, जय श्री प्रभुपाद। तो इतना उत्कृष्ट उनका सेवा भाव है कि वृंदावन में जाकर के केवल दर्शन नहीं लेती हैं, सेवा करती हैं, हर एक विग्रह के लिए भोग बनाती हैं और उनको पुजारी प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि भगवान के विरह में इतने भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से इतने कमजोर थे कि वे वृंदावन नहीं आ सकते थे, तो माता जानवा उनको मिलने के लिए पैदल गोवर्धन जाती है। और वो जाती हैं और राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर थी। तो गौड़िया वैष्णव के लिए राधा कुंड सर्वोत्तम स्थान है भजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन माता जानवा इस प्रकार के सेवा भाव में थी कि पहले जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलती है, उनको सांत्वना देती है, उनसे वार्तालाप करती है, और बाद में उनसे निवेदन करती है कि हमको गोवर्धन परिक्रमा में जाने के लिए आज्ञा दी जा सके। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से इस प्रकार निवेदन करके फिर वो गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं, दो तीन दिन वहाँ पर वो रुकते हैं, वापस फिर वृंदावन आते हैं। तो इस प्रकार के सेवा भाव की हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के विग्रह के प्रति और भक्तों के प्रति हमारा जो सेवा भाव है वो असीमित हो जाए, क्योंकि यही सेवा भाव भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो इनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और भी कई दिवस हैं जिनकी चर्चा बाद में करेंगे। ये जो चंदन यात्रा महोत्सव जो हम 21 दिन तक मनाते हैं, इसके पीछे की कथा तो हम सभी को पता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ये जो चंदन यात्रा जो शीला माधवेंद्रपुरी के माध्यम से इस जगत में अवतरित हुई, तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा उनकी सेवा के अवसर के रूप में हमको मिलती है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले भी कई सारे अवतार हुए और लीलाएं की और उनकी लीला कथाओं का हम श्रवण करते हैं, लेकिन जिस प्रकार के सेवा के अवसर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रकट किए हैं, उस प्रकार का सेवा अवसर बाकी जो लीला अवतार हैं वो उन्होंने प्रकट नहीं किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की हम लीला में देखते हैं कि अभी थोड़े समय के बाद अगले महीने मंदिर मार्जनम की भी लीला होगी, बाकी किसी अवतार के बारे में नहीं सुनते कि मंदिर साफ है। तो गुंडीचा मार्जनम की लीला करते हैं, प्रसाद वितरण की लीला करते हैं, संकीर्तन की लीला करते हैं, जो अन्य जो स्थल हैं भगवान की लीला के स्थल है वहाँ पर जाने की लीला करते हैं, प्रचार कार्य का जो आयोजन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं, प्रचार कार्य के लिए सबको आज्ञा देते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है वो एक जीव के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। हमार आज्ञा है गुरु हो ये तारो ये देश, ये भगवान की आज्ञा को शिरोधार करना, भगवान की आज्ञा को अपने हृदय में लेना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा का लक्षण है कि भगवान आज्ञा दें। एक वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए जगन्नाथपुरी से प्रस्थान करते हैं, तो एक जगह पर एक मुस्लिम गवर्नर आकर के महाप्रभु के रूप को देख करके उनके बारे में श्रवण करके पूरी तरह अश्रुपात करने लगता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो महाप्रभु उसको पहले कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण भगवान हरि का नाम लो, और वो नाम लेने के बाद तुरंत वो कहता है कि अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे एक आज्ञा दीजिए, एक सेवा करने की आज्ञा मुझे प्रदान कीजिए। और उस तात्पर्य में छोटा तात्पर्य है लेकिन प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से साधना करता है, ठीक प्रकार से भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है और अन्य सेवा करता है, तो उसको भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। सेवा साधना का फल है। सेवा जो है, सेवा करने में रुचि, सेवा मांगने के लिए आतुरता, ये भगवान का भजन भगवान की साधना करने का फल है। तो जो साधना है वो एक बीज के समान है, जब उसको बोते हैं तो उसकी जब फसल आती है उसका जो फल आता है वो सेवा भाव के रूप में आता है, सेवा करने के लिए आतुरता के रूप में आता है। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो सेवा का अवसर जो बनाया इस उत्सव के माध्यम से, वो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्रपुरी की हमको सबसे बड़ी देन है। क्योंकि जो वृंदावन जो स्थल है जहाँ पर ले जाने के लिए हमें महाप्रभु आए, जो वृंदावन का रस जो बाकी अन्य अवतार प्रदान नहीं करते हैं, उस वृंदावन में हर व्यक्ति हर समय भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है केवल एक ही उद्देश्य से, भगवान को प्रसन्न करने। ये वृंदावन का भाव है। तो इस वृंदावन के भाव को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने पार्षदों के माध्यम से उस भाव को प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से हम निरंतर भगवान की सेवा में लग सकते हैं। आप सोचिए चंदन यात्रा होती है तो इसको उनके पूरे मंदिरों में कितने बड़े बड़े प्रकार के उत्सव होते हैं। कई मंदिरों में तो हर दिन एक विशेष दर्शन होता है, जैसे मायापुर के मंदिर में 21 दिन तक 21 प्रकार के दर्शन होते हैं। तो और भक्त लोगों को कितना सेवा का अवसर मिलता है, बाकी समय तो केवल पुजारी लोग भगवान की सेवा कर पाते हैं, सामग्री इत्यादि जुटाते हैं, लेकिन जब चंदन यात्रा आती है तो सबको चंदन घिसने का अवसर मिलता है। बच्चा हो या माताएं हो या प्रभु जी हो या भक्त हो या अभक्त हो, जिसको इच्छा है वो सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इतना जो निकट से सेवा करने का अवसर है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये जो वृंदावन का भाव है कि अहर्निश भाव से भगवान की सेवा में लगना है, इस भाव को ये चंदन यात्रा का उत्सव दर्शाता है। तो इसमें हम आज का जो श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का जो उत्कृष्ट प्रेम है उसका यह स्वाभाविक परिणाम होता है, प्रगाढ़ प्रेम यही स्वभाव आचार्य, यह उसका स्वभाव होता है कि जो निज अपना जो दुख है या विघ्न है उसके बारे में व्यक्ति विचार नहीं करता है। तो अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अपने को जो अच्छा लगता है उसको छोड़कर जब भगवान के प्रसन्नता पर व्यक्ति फोकस करता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उसको भक्त कहा जाता है, उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो इसमें माधवेंद्रपुरी के उदाहरण से कि सेवा का क्या महत्व है और सेवा क्या है उसको चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं। ये जो माधवेंद्रपुरी की कथा है इसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों को करते हैं जब वे शांतिपुर से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं संन्यास ग्रहण करने के बाद। तो रेमुना के खीरचूर गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं, तो महाप्रभु जब गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हैं तो गोपीनाथ जी के जो मुकुट में एक माला होती है वो चैतन्य महाप्रभु के गले में गिर जाती है, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहाँ पर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और शाम को बैठ करके वो इस कथा का श्रवण अपने भक्तों को कराते हैं और कहते हैं कि ये कथा मैंने स्वयं अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी है। तो ये जो माधवेंद्रपुरी का गुणगान है ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया है। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे, किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें न करने के भय से बिना किसी संगी के रहते थे, क्योंकि संसारी व्यक्तियों के भय से वे बिना किसी संग के रहते थे। एक बार वे गए सन्यासी लोगों का संग करने के लिए, क्योंकि वे भी सन्यासी थे, तो सन्यासी लोग जाने के बाद कहते हैं ओम नमो नारायण, तो उनको लगता है कि वो सन्यास लेने से नारायण बन जाते हैं, तो फिर माधवेंद्रपुरी उनके संग में भी नहीं रहते थे। और इस प्रकार से जब वे वृंदावन पहुंचे तो उनको पता है किस प्रकार से वो जो गोविंद कुंड है उसके पास आकर के विश्राम करते हैं, और वहाँ पर भगवान अपने वचन का पालन करते हुए जो उनके भजन में अनन्य अंशन तयंतो माम ये जना परिपासते थे तेषाम नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाँ में हम, मैं खुद वहन करके लेके जाता, भेजता नहीं, ददाते नहीं, वहाँ में हम ददाते हम नहीं कि मैं देता हूँ उसको प्रदान करता, वहाँ में हम मैं स्वयं उसको पहुँचाता हूँ। तो क्योंकि माधवनपुरी उस प्रकार के भक्त थे तो भगवान स्वयं उनके लिए दूध का घड़ा लेकर के आते हैं, उनको दूध प्रदान करते हैं और माधवेंद्रपुरी उसको स्वीकार करते हैं। बाद में भगवान आकर के उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपका सेवा भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएगा यहाँ पर और कब मुझे वो ये जो झाड़ी और जमीन के अंदर मैं हूँ वहां से मुझे निकालेगा। तो भगवान अपना प्राकटीकरण भगवान भक्तों की सेवा भाव के अनुपात में ही करते हैं। भगवान किसी को भी बोल सकते थे लेकिन वे माधवेंद्रपुरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी का सेवा भाव इतना विशाल था कि उस सेवा भाव से आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने उनको माध्यम बनाया अपना प्राकटीकरण करने के लिए। और फिर माधवेंद्रपुरी उठते हैं और बाकी जो अनियोर गाँव के निवासी थे उनको बुलाते हैं, उनको बुलाकर वे गोपाल जी को वहाँ से निकालते हैं झाड़ियों से और मिट्टी से और फिर उनकी स्थापना गोवर्धन के ऊपर करते हैं। और तुरंत ही सीना जी का केवल दर्शन करने से, गोवर्धनधारी सीना जी का दर्शन करने से लोग इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि जो भी उनके पास है वो ला करके भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। तो भगवान से अगर हम वास्तविक प्रेम करते हैं, भगवान से वास्तविक रूप से आकर्षित होते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान की सेवा में जो भी हमारे पास है मानस देह हो गए हो पूरी तरह उसको समर्पित करना। तो तुरंत भगवान के दर्शन के लिए भगवान की सेवा के लिए बहुत मटकों में पानी लेकर के आते हैं, फिर पंचगव्य से पंचामृत से भगवान का स्नान करते हैं, सुगंधित तेल से भगवान की मालिश करते हैं और उसके बाद जो उस गांव के निवासी थे जितना उनके पास था, कुछ रखा नहीं भविष्य के लिए, जितना दूध दही अन्न धान्य जो भी था सब लेकर के वहाँ पर आते हैं और कहते हैं अब भगवान के लिए भोग बनाइए। तो वहाँ पर 10 ब्राह्मण अन्न का रंधन करते हैं, 5 ब्राह्मण सब्जी बनाते हैं और 7-8 ब्राह्मण चपाती बनाते हैं और बाकी कुछ ब्राह्मण मिलकर के पकौड़ा बनाते हैं। इस प्रकार से अन्नकूट महोत्सव होता है। तो भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान ये नहीं देखते कि हम उनको कितना देते हैं, हाँ भगवान ये देखते हैं कि हम हमारे लिए कितना रखते हैं उनको छोड़कर। तो भगवान को ब्रजवासी क्यों प्रिय है? क्योंकि ब्रजवासी अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, इसलिए भगवान ब्रज में लीला करते हैं, इसलिए भगवान ब्रजवासियों को इतने प्रिय है। तो ब्रजवासियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने लिए कुछ विचार नहीं करके सब कुछ सीना जी को अर्पण कर दिया। सब जो गांव वाले थे सब ने एक एक गाय भगवान को दे दी। मथुरा के कुछ लोग आकर के वहां पर मंदिर इत्यादि बांधा उन्होंने। और इस उत्सव का जब पता चला तो बाकी जो गांव वाले थे वे भी आकर के पूरा अपने गाँव से सब सामान लेकर के वहां पर आकर के अन्नकूट महोत्सव मनाते थे। तो देखिये भगवान के प्रति जो आकर्षण है, प्रेम है, उसका प्रतीक भगवान के प्रति सेवा भाव है। अगर हम कहें भगवान के प्रति प्रेम है लेकिन सेवा करने के लिए समय नहीं है, सेवा करने के लिए उत्साह नहीं है, तो हमारा जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम नहीं है, वो एक मनोस्थिति है, एक मन का विचार है लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं। वास्तविक प्रेम सक्रिय सेवा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है जब सेवा करने की आतुरता हमारे हृदय में आती है। तो इस प्रकार से ये जो उत्सव है 2 साल तक चलता रहा। 2 साल से 2 साल तक बिना किसी विघ्न के, बिना किसी ब्रेक के गाँव वाले आते थे, दूसरे राज्यों से लोग आने लगे सब कुछ लेकर के। तो हम लोग तो एक उत्सव मनाते हैं और अगले महीने का उत्सव प्लानिंग करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, रिव्यू लेते हैं और अगली बार सोचते हैं कि 2-3 हज़ार भक्तों के लिए उत्सव किस प्रकार से मनाया जाए। और अगर रविवार को दोपहर को होता है तो विशेष मीटिंग होती है उसके लिए, शाम को होता है तो भी वॉलंटियर्स की कमी रहती है प्रसाद सर्विंग के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ऑफिस से आना है, फास्टिंग भी है, पहले प्रसाद लेना है। तो ये एक बड़ा विचार चलता है। हमारा एक जो बोर्ड है 10 लोगों का, वो केवल इस बारे में विचार करता है कि सेवा के लिए भक्त लोग कैसे जुटे, और ये बहुत ही गंभीर चर्चा है। उसके लिए आप सोचिए 10 काउंसिल लोग बैठ करके 3-4 घंटे का मीटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए माधवेंद्रपुरी का कुछ मैनेजमेंट नहीं था, कुछ वर्णन नहीं आता है कि उन्होंने टीम बनाया, टीम लीडर बनाया, लेकिन जितना उत्कृष्ट सेवा भाव रहता है, जितना भगवान के प्रति प्रेम रहता है, उतना ही सेवा सुचारू रूप से अपने आप हो जाता है। तो खैर अपने आप नहीं होगी, हम उसका प्रयास करते हैं मैनेजमेंट करने का, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि जहाँ पर भगवान के प्रति प्रीति है वहां पर सेवा में कोई रुकावट नहीं होती। 2 साल तक ये उत्सव निरंतर चलता रहा। उसके बाद भगवान माधवपुर से प्रसन्न होकर के, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता भगवान भक्त को सेवा आज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान की आज्ञा हो या भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु की आज्ञा हो या वैष्णव की आज्ञा हो, सबका स्वभाव एक ही है। तो सेवा के लिए कोई आज्ञा प्राप्त करना ये परम सौभाग्य है। तो दूसरी बार गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि कई वर्षों तक मैं भूमि के अंदर था, इसलिए आप स्वयं जाकर के मलया से यानी कि जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आइए और आप स्वयं ही ये सेवा कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मैनेजर बनने के बाद डेलीगेशन नाम की एक चीज़ हम सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सचेत रहने से कि क्या डेलीगेट करना है और क्या स्वयं करना है। तो स्वयं करने वाली चीज़ को भी अगर डेलीगेट कर देंगे तो फिर हम सेवा से और कृपा से वंचित रह जाएंगे। डेलीगेशन भी सेवा हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि क्या मैं ये सेवा डेलीगेशन भी करना है, वो भी सेवा के रूप में करना है, किसी दूसरे को भी सेवा में लगाना है। तो भाव होना चाहिए। भाव अगर ये है कि इसको लगा के मैं निकल जाता हूँ, जैसा कि एटलस के बारे में हम सुनते हैं ना, उसके ऊपर एक ग्लोब था, तो एक व्यक्ति उसके पास जाकर के पूछता है कि क्या है, तुम अनुभव करो, तो उसको ले दे देता है और बोलता है कि अभी तुम अगले व्यक्ति को देना, मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं बच जाऊँगा, मैं छूट जाऊँगा, बाकी जो है उसको करने दो। अगर अगर सेवा का भाव है कि हाँ हम दूसरे भक्त को सेवा करने के रूप में उसको सेवा में लगा रहे हैं, तब सेवा डेलीगेट कर सकते हैं, अन्यथा प्रयास करना चाहिए कि स्वयं ही सेवा करें। और विशेष रूप से जो भगवान के विग्रह की सेवा है और वैष्णव की सेवा है, उसको तो व्यक्तिगत रूप से करना ही चाहिए जितना भी सामर्थ्य है। क्यों? राजा रा तुच्छ सेवा देखी होइलो तुष्ट होइलो प्रभु रमन। तो प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र बड़ी बड़ी सेवा कर रहे थे, राज्य भी वो सेवा के रूप में चला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाने की सेवा स्वीकार की, तो उस सेवा को देख करके चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। इतने महान भक्त हैं लेकिन फिर भी इतनी छोटी सेवा को भी इतना प्रेम से कर रहे हैं। जीव गोस्वामी ने श्यामानंद प्रभु को नाम दिया श्यामानंद पंडित, नाम दिया पंडित लेकिन सेवा दी सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की। क्योंकि हमको लगता है कि भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव हो गया तो अभी तो कुछ घर में कार्यक्रम अन्यथा कुछ तो प्रचार करना ही चाहिए, तो वो भी अच्छा है क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है, हमारा आज्ञा है गुरु हो ये तारो ये। लेकिन किसी भी सेवा को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सेवा का बहुत महत्व है, क्योंकि ये भक्ति जो है ये प्रेममयी सेवा ही है। प्रभुपाद जी ने भक्ति को केवल भाव नहीं कहा, इसको कहा कि प्रेममयी सेवा, और कितना बड़ा उसका महत्व है। आप सोचिए संसार दावा नल लिटे लोग हम गाते हैं, उसमें तीसरे श्लोक में क्या गाते हैं, शिव विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना। ये गुरु जी ये हमको विग्रह की सेवा में संलग्न करते हैं और मंदिर मार्जन इत्यादि की सेवा में संलग्न करते हैं। उसके बाद फिर से छठे श्लोक में, फिर चौथे श्लोक में फिर प्रसाद रूपी सेवा का वर्णन आता है, किस प्रकार से गुरु जी जो भक्तों के माध्यम से भोग बना करके भोग भगवान को अर्पण करते हैं। कुकिंग सेवा के बारे में आता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा के बारे में आता है। उसके बाद छठे श्लोक में फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार गुरु जी जो सखियाँ हैं उनके बहुत निकट के पार्षद हैं और उनको उनकी सेवा में मदद करते हैं, उनकी सेवा में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो मंगल आरती है उसमें सेवा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद तुलसी आरती में क्या करते हैं, फिर से सेवा के बारे में गाते हैं। यही निवेदन मोर यही निवेदन नहीं यही निवेदन धरा सखी रनुगत कर सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। और उसके बाद जप करते हैं और 2 घंटे तक तो यही मांगते हैं, चल करके दौड़ करके कदम की परिक्रमा करते हुए ब्रिज के ऊपर परिक्रमा मार्ग पर जहां जाते हैं गार्डन में क्या कर रहे हैं, केवल वही कर रहे हैं, हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे आपकी सेवा में लगाइए, मुझे आपकी सेवा में लगाइए, 2 घंटा कीर्तन में सेवा मांग रहे हैं। तो जो पूरी पद्धति है, क्यों? क्योंकि वृंदावन जो स्थल है वो सेवा का स्थल है। वृंदावन में चाहे घास का तिनका हो, चाहे गोपी हो, चाहे गाय हो, चाहे माता यशोदा हो, हर कोई सक्रिय रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर 24 घंटा बिना किसी ब्रेक के सेवा में लगा हुआ है। तो ये जो संस्था शिला प्रभुपाद जी ने बनाई है, ये हमको अप्रेंटिस उसका ट्रेनिंग देने के लिए बनाई है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जो संस्था है ये आलसी लोगों के लिए नहीं है, ये सक्रिय रूप से सेवा करने वाले लोगों के लिए। और प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से दिखाया किस प्रकार से पूरा अंतिम श्वास तक प्रभुपाद जी सेवा करते रहे, चाहे ट्रांसलेशन का सेवा हो या प्रचार का सेवा हो या भक्तों के मार्ग निर्देशन का सेवा हो। तो सेवा ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो माधवेंद्रपुरी को ये जब सेवा रूपी संपत्ति प्राप्त हुई, तो हालांकि विरक्त सन्यासी थे, अपने जीवन के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन भगवान की आज्ञा लेकर के तुरंत चल पड़े। निज दुख विघ्नादि ना करे विचार, कुछ सोचा नहीं कि कैसे जाएंगे, कैसे चल के जाएंगे, क्या व्यवस्था करनी है, चल दिए भगवान की आज्ञा लेकर के। और फिर यमुना आते हैं वहां पर, फिर भगवान उनके लिए खीर चुराते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अभी सेवा के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से भक्त अपनी सेवा से भगवान का गुणगान करता है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर भक्त का गुणगान करते हैं। देखिए, हर इस्कॉन के मंदिर में सामने राधा कृष्ण रहते हैं, सामने श्रील प्रभुपाद जी रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान को अलग नहीं कर सकते। और फिर माधवेंद्रपुरी जो यहाँ पर आगे कहते हैं, अपने लिए माधवेंद्रपुरी किसी भी चीज की कामना नहीं करते थे, लेकिन गोपाल जी का आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग मांग कर चंदन एकत्र करने के लिए हजारों मील की यात्रा की। अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, अयाचक वृत्ति का पालन करते थे, कुछ खाने के लिए भी नहीं मांगते थे, जीवन निर्वाह के लिए नहीं मांगते थे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सहस्त्र कोष आशी बोले चंदन मांगिया। तो भक्त का जो व्रत होता है वो भगवान की सेवा का व्रत होता है। भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको भक्त पालन करता है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देता है। कभी कभी हम अपने व्रत के चक्र में इतना पड़ जाते हैं कि जो जो व्रत का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, उसको भूल जाते हैं। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से भोजन नहीं मांगा। इस सिद्ध पुरुष, इस सुप्रसिद्ध पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का बोझा अपने सिर पर रखा। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए टिफिन पैक करके नहीं लेके गए, लेकिन उनके लिए चंदन का बोझा उठाने के लिए। ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी का गुणगान कर रहे हैं। अपनी निजी सुख सुविधा की परवाह न करके माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन तथा 20 तोला कपूर गोपाल के शरीर में लेपने के लिए ले आए। उसके लिए यही दिव्य आनंद काफी था। क्यों? क्योंकि भक्त जब सेवा करता है तो अपने दुखों का, अपने कष्टों का ध्यान नहीं रखता है, उसका केवल एक ही प्रसन्नता होती है कि इस सेवा से भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे। और आगे उसके वर्णन में कहते हैं, यद्यपि माधवेंद्रपुरी के पास एक शदाम नहीं था, कुछ भी धन नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों से तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र उत्साह गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ ले चलने में था। तो हालांकि उनको सरकारी कागज दिए थे, लेकिन कुछ धनराशि इत्यादि नहीं थी, और उनको यह भी डर नहीं था कि चंदन इतना बहुमूल्य चीज है, कोई चोर लुटेरे डाकू उसको बीच में ले लेंगे। उसको भी छोड़ करके इतना उत्साह था, इन चीजों का उन्होंने परवाह नहीं की। और उसके भाव, यही भाव गाढ़ प्रेम लोके देखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दिले चंदन आने थे। श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, अतएव उन्होंने नीलाचल में चंदन तथा कपूर लाने के लिए उनसे कहा। काफी कास्ट उठाकर तथा अत्यधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन के बोझ को रेमुना ले आए। बहु परिश्रम चंदन रेमुना लाईला, बहुत परिश्रम करके, आनंद बढ़ीला माने दुखे न गढ़ीला, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सारी कठिनाइयों की परवाह नहीं की। गोपाल भगवान ने माधवेंद्रपुरी के उत्कृष्ट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। उन्होंने कहा कि मैं और जो गोपीनाथ है वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए आप उसको वृंदावन मत लेकर के आइए, यहीं रेमुना में रह करके आप इस चंदन का लेप बना करके गोपीनाथ जी के शरीर पर लेपन कीजिए, और उससे मेरा शरीर भी शीतल हो जाएगा। तो भगवान का शरीर कुछ ठंडा या गर्म नहीं होता है, भगवान का दिव्य शरीर होता है, इस उपनिषद में हम पढ़ते हैं। ये तो भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, और भगवान केवल भक्त के जो सेवा रूपी कार्य है उसको स्वीकार नहीं करते, उसके पीछे जो भाव है भगवान को प्रसन्न करने का, उस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक उदाहरण गौरखपुर के प्रवचन से बता के मैं बंद करूँगा। वो कहते हैं कि चंदन जो होता है वो लकड़ी के रूप में होता है, और लकड़ी को भगवान को डायरेक्ट अर्पण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भगवान के चरणों में लकड़ी रख दिया, भगवान आप खुश हो जाओ उससे, नहीं। वो जो लकड़ी है उसको लेकर के पत्थर पे घिसना पड़ता है, मेहनत लगती है उसमें, और वो घिसने के बाद उसमें थोड़ा कपूर डालने के बाद जब वो चंदन का पेस्ट बनता है, लेप बनता है, उस लेप को लेकर भगवान के शरीर पर उसको लेपन करते हैं, जैसे आज किया है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि हम जो है वो एक चंदन की लकड़ी के समान है, लेकिन हम स्वयं को भगवान को तुरंत समर्पित नहीं कर सकते। हमको वैष्णवों के हाथ में, गुरु के हाथ में, वो उनको, हमको उनको पकड़ने का अवसर देना पड़ेगा कि हमको पकड़कर सेवा में रगड़िए, थोड़ा सेवा में लगाइए। लेकिन अगर हम ऐसे चंदन के टुकड़े बनेंगे जो कि फिसल जाता है या उछल जाता है, आपने देखा है कभी कभी चंदन का टुकड़ा छोटा हो जाता है, तो वो टुकड़ा कोई नहीं लेते, वो सब बोलते हैं इसको रखो। बड़ा अगर अच्छा टुकड़ा है जिसपे ग्रिप बनता है, जिसपे ग्रिप बनता है, उसको पकड़ करके जब घिसते हैं तब थोड़ा अच्छा चंदन का लेप निकलता है। छोटा टुकड़ा होता है फिसल जाता है, क्योंकि हाथ भी फिसल जाता है उसके पत्थर के ऊपर। तो बोले कि हमारे ये एक प्रयास रहना चाहिए कि ऐसा हम सेवक बने जो कि गुरु और वैष्णवों के हाथ में उपकरण बने, और उनको आज्ञा दें कि रगड़िए, जो सेवा देना है दीजिए, जो बोलना है करने को, जो करने को बोलना है वो बोलिए, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। जब ऐसा करते करते जब चंदन की लकड़ी का लेप बनता है, तो वो लेप हमारी जो स्वच्छ चेतना है, जो हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो जाता है, उस चेतना से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। उस लेप को, उस चेतना को भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये चंदन यात्रा में जो सेवा का अवसर हमको प्राप्त होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवा के लिए चार गुण चाहिए, इसको कह करके मैं इसको विराम दूंगा। जो सेवा हम करते हैं, सर्वप्रथम वो सेवा ऑथोराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो अपनी मर्जी से जो कार्य करने के लिए, जो भगवान के लिए करेंगे, उसको ही हम सेवा कह देंगे। ये है, लेकिन ये उच्च स्तर की सेवा नहीं है, शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं है। भगवान उसको भी इंक्लूड करते हैं, यत करोषि, जो करना है करो, मेरे लिए कर दो, लेकिन ये उत्कृष्ट नहीं है, इसका स्तर नीचे है। उत्कृष्ट स्तर की अगर सेवा करनी है, जिस सेवा की प्रभुपाद जी हमसे आकांक्षा करते हैं, उस सेवा के लिए पहले हमको आदेश प्राप्त करना चाहिए, आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा है कि उस सेवा को प्राप्त करने के बाद हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, मनन करना चाहिए कि सेवा कितनी दुर्लभ है। श्याम गौरी अंगे दी वो चंदन एरा गंध, चावर डुलाओ कबे हेरी मुख चंद्र। ये नरोत्तम दास ठाकुर उनकी लालसा में प्रार्थना में कहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम भगवान को चंदन लगाएंगे। तो उस सेवा का महत्व जानकर उसके प्रति हृदय में कृतज्ञता का भाव जागृत करना चाहिए। फिर उस कृतज्ञता के भाव से हमारे हृदय के अंदर एक दृढ़ शक्ति आएगी, दृढ़ संकल्प आएगा, क्योंकि हर सेवा में विघ्न आएगा। भौतिक जगत में जो भी सेवा हम करें, छोटी सेवा करें या बड़ी सेवा करें, हफ्ते में एक दिन करें या प्रतिदिन करें, हर सेवा में विघ्न आएगा, हर सेवा में कुछ ना कुछ कष्ट आएगा। हर सेवा के लिए कुछ ना कुछ त्याग बलिदान की आवश्यकता होती ही है। बिना त्याग के कोई भी सेवा कर पाना कदापि संभव नहीं है। तो उनको फेस करने के लिए, उनको सामना करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और शक्ति आती है। और उसके बाद जब सेवा संपन्न होने के बाद जब क्रेडिट मिलता है, जब लोग सराहना करते हैं, तो क्या करना चाहिए? उस एप्रिसिएशन को, उस सराहना को वापस भक्तों को और भगवान को दे देना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू ऑल द असेंबल डिवोटीज। आपके लिए क्या बचा? ऑल बोल दिया ना, ये थोड़ी बोला 70% ग्लोरीज 70% टू राधा वृंदावन चंद्र, 10% टू प्रभुपाद, 5% टू वैष्णव, 5% मेरा भी कुछ मार्जिन कमीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, तो तीन बार बोलते हैं, एक बार भी नहीं तो श्री गुरु एंड गौरांग। हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए क्या है? सेवा करने का जो हमको अवसर प्राप्त हुआ, वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो उपहार है, सबसे बड़ा देन है भगवान। तो ये जो सेवा भाव है, ये जो भक्ति भाव है, ये हमारे भक्ति का जड़ है, ये भक्ति की नींव है। इसके बारे में परम पूज्य भक्तिचारू महाराज का एक छोटा सा क्लिप है, उसको जस्ट ऑडियो क्लिप सुना करके उसको हम वहाँ पर विराम देंगे।
Always remember that we all have joined this one, you have come to this one. That is the most
man.
As your spiritual master, as your guide, as your leader, my responsibility is to see
your devotion. No, no. Listen.
Your devotion is my main concern. I don't care how much service you are rendering. I don't care how expertly you are rendering your service. Always remember that we all have joined ISKCON, you have come to ISKCON just to develop your devotion. That is the most important consideration. And as your spiritual master, as your guide, as your leader, my responsibility is to see that your devotion is increased. Your devotion is my main concern. I don't care how much service you are rendering. I don't care how expertly you are rendering your service. I don't care how much money you are bringing, because that is not my concern. My concern is your devotion. You make advancement in your spiritual life. That's all I want. Because I can tell you, service, you can hire people and get service done. So many business organizations are getting such huge operations run. That is, by paying people money, they are getting that done. So there are lots of expert people outside there. And by paying money, you can get their expertise. But our concern is devotion. We want devotees. We don't want karmis. We don't want expert employees. What we want is devotion, pure devotion. That is what is our business. And when we become devotees, then we become expert. But that's another kind of expertise. It is through devotion that our expertise develops, and that expertise is desire. Like we saw, Prabhupada was expert in everything. Whatever Prabhupada did was, he was first class. Not only when Prabhupada wrote books, not only when Prabhupada gave lectures, not only when Prabhupada preached to people, whatever Prabhupada did was perfect. That is the sign of pure devotion. Because devotee is perfect, pure devotee's devotion is perfect, he has achieved the perfection of his life, therefore whatever he does becomes perfect. When Prabhupada sang, it was perfect. When Prabhupada spoke, it was perfect. When Prabhupada cooked, it was perfect.
Iska Hindi mein thoda anuvad batata hu. Iska title hai, my only concern is your devotion. YouTube पे कहीं रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि मेरा आपके गुरु के रूप में और आपके गाइड के रूप में एक ही चिंता है, एक ही ड्यूटी है कि आपका भक्ति भाव किस प्रकार से विकास हो रहा है, आपका सेवा भाव किस प्रकार से विकास हो रहा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कितना सेवा कर रहे हैं या कितना धन लेके आ रहे हैं या क्या सेवा कर रहे हैं या किस निपुणता से कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला कर्तव्य है देखना कि आपके हृदय में भक्ति का विकास हो। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के बहुत सारे लोग हैं जो कार्य करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोगों के साथ कर्मी लोग भी कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग निपुण हैं बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन ये संस्था बनी है, रूपा जी ने संस्था बनाई जिससे कि हम भक्ति भाव विकसित करें, भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करके उसके माध्यम से सेवा करें। और फिर कहते हैं कि शीला प्रभुपाद जी निपुण थे, लेकिन निपुण थे क्योंकि उनका जो भगवान के प्रति भक्ति भाव था वो निपुण, वो परफेक्ट था। डिवोशन वॉज परफेक्ट, इसलिए जो अगर हृदय के अंदर भाव परफेक्ट है तो उस भाव से हम जो भी करते हैं वो भगवान उसको परफेक्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सबसे अधिक ध्यान, सबसे अधिक प्रसन्नता हम गुरु को देते हैं जब हम हृदय में भक्ति भाव से जो भी सेवा कर पाते हैं हमारी क्षमता के अनुसार उसको करते हैं। छोटी सेवा, बड़ी सेवा, छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है, सेवा केवल सेवा होती है, लेकिन उसको अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं तब हमको उस सेवा का पूर्ण लाभ मिलता है। और उस सेवा का पूर्ण लाभ के रूप में हमें भगवान और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और फिर हमारे मन में वृंदावन का जो भाव है उसको समझना और उसका प्रकटीकरण होता है, जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और शीला प्रभुपाद जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री माधवेंद्रपुरी की, श्रील प्रभुपाद की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा। जिस ग्रेस रेवतीपति प्रभु ने बहुत ही बहुत ही सुंदरता से और सरलता से सेवा का महत्व बताया, क्योंकि वो खुद भी अलग अलग सेवा में बहुत प्रेम से व्यस्त रहते हैं। आइए हम उनको धन्यवाद देंगे तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मराठी भगवद गीता क्लास 11:30 बजे आज का जो क्लास है हिज ग्रेस उरुक्रमा कृष्ण प्रभु द्वारा। आने वाले बुधवार को 15 तारीख है, मोहिनी एकादशी है और पारणा का समय दूसरे दिन गुरुवार के दिन 6:01 से लेके 8:15 तक है। शनिवार के दिन 18 तारीख है और हम लोग मनाने जा रहे हैं नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव। तो नरसिंह चतुर्दशी आविर्भाव दिन के महामहोत्सव के ऊपर हम लोग फास्टिंग करने वाले हैं शाम को सूर्यास्त तक, और अभिषेक 7:15 शुरू होगा, उसके बाद प्रसाद और प्रवचन होगा। ये अनाउंसमेंट स्पिरिचुअल टैलेंट्स सर्च कॉन्टेस्ट की ओर से है। अगला बुक है भगवद गीता चैप्टर 4, ओरिएंटेशन क्लास 19 तारीख को 10 बजे होगा। जो भक्तों को इसमें सहभागी होना चाहते हैं बाहर टेबल रखा है, वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।